हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11वां अध्याय श्लोक संख्या 11, 12 एंड 13। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्भरधरुणबिम्बफला धरोष्ठात् पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवैस्तवे वेदेसाङ्गपत्क्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत्पतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न वेदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद 11वां अध्याय जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश। भगवान श्री कृष्ण अपने समस्त प्रेमियों के वार्ता को सुनते सुनते आज द्वारिका नगरी में प्रवेश कर चुके हैं और अब सूत गोस्वामी इन 5 श्लोकों में द्वारिका पूरी का वर्णन करेंगे और द्वारिका के वैभव के विषय में बताएंगे। मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए श्लोक नंबर 11। मधुर भोज दशार्हा कुकुरांधक वृष्णि भी आत्मतुल्य बलैर्गुप्ता नागैर्भोगवतीमिव मधुभोज दशार्हार्हा कुकुरांधक विश्वभि ఆత్మతుల్య బలైర్గుప్త నాగైర్భోగవతీమివ మధుభోజ దశార్హార్హ కుకురాంధక విశ్రిభి ఆత్మతుల్య బలైర్గుప్త నాగే భోగవతీమివ. తో అభి ద్వారికా కే అనేక పూర్వజ యాదవో కే నామ గినాతే హువే సూత్ గోస్వామి కే రహే హై కి యే జో ద్వారికా నగరీ హై వో బహుత్ హీ మహాన్ బలవాన్ యాదవో కే ద్వారా గుప్తాం కా మతలబ్ హై సురక్షిత హై. బహుత్ జ్యాదా బడే బడే యహాన్ పర్ యాదవ్ హై జో కి బహుత్ జ్యాదా బలవాన్ హై ఉన్కే నామ బతా రహే హై మధు భోజ దశార్ అర్ అరహ్ కుకుర్ అంధక్ और विश्रीम भी. तो ये सब बड़े बड़े बहुत ही बलवान राजाओं के नाम हैं और ये यदुकुल हैं. जैसे कभी कभी भगवान श्री कृष्ण को भी विश्रीवंशी कहा जाता है या मधुवंशी कहा जाता है या इस तरह से. तो ये सारे बड़े बड़े यादवों के बलवानों के नाम हैं और कहते हैं कि ये जो द्वारिका है वो इन महान बलवान यादवों के द्वारा सुरक्षित है. आत्मतुल्य बलायर गुप्ताम इनका जो आत्मतुल्य मतलब इनके बल की बराबरी केवल वही कर सकते हैं. आत्मतुल्य का मतलब अपने बल का केवल उन किसी और के बल के साथ इनकी तुलना नहीं हो सकती. कोई और इनका किसी के साथ कंपटीशन नहीं है. केवल वो खुद ही इतने ज्यादा बलवान है. उनके जितना और कोई है ही नहीं. तो हम कंपेयर करके नहीं बता सकते. आत्मतुल्य मतलब यादवों का बल तो उनके ही तुल्य था और उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता. तो ऐसे यादवों के द्वारा ये नगरी सुरक्षित है. किस प्रकार? तो यहाँ पर दृष्टांत देते हैं. नागैर भोगवती मिवा. अब पाताल में एक नागलोक है जो अत्यंत ही सुंदर नगरी है. नागों का एक लोक है. नागों और वो नागों के द्वारा सुरक्षित है. अब हम यहाँ पर विचार कर सकते हैं कि नाग कितने विषैले होते है ना. नागों की नगरी में प्रवेश कर पाना संभव नहीं है क्योंकि वो नागों के द्वारा सुरक्षित है और अत्यंत ही सुंदर यानी बहुत सुंदर नगरी है. असल में क्या है, हम तो केवल इस संसार के नगरों के विषय में जानते हैं, इस संसार के सिटीज के और कंट्रीज के विषय में जानते हैं. हम समझते हैं इसके अलावा और कोई नगरियां हैं नहीं. लेकिन शास्त्र हमें बताता है कि बहुत बहुत लोक हैं, बहुत सारे धरती के नीचे लोक हैं, धरती के ऊपर लोक हैं. तो और यहाँ पर जो लोक होते हैं, यहाँ पर जो सिटीज होते हैं, नगरियां होती हैं, वो तो केवल ईंट और पत्थरों से बनी हुई होती हैं. परंतु जो स्वर्ग इत्यादि दूसरे लोक हैं वो तो हीरे जवाहरात से मिलकर बने. अब जैसे इंद्र की जो नगरी है स्वर्ग लोक, उसको अमरावती कहा जाता है. कुबेर की नगरी को अलकापुरी कहा जाता है. वरुण की नगरी को विभावरी कहा जाता है. और नागों की जो नगरी है यहाँ पर बताया भोगवती. नागों की नगरी को भोगवती कहा जाता है जो बहुत ही सुंदर है. तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार नागों की नगरी बहुत ज्यादा सुंदर है, उसकी रक्षा नाग कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी वहां पर आकर उन पर आक्रमण नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुरक्षित है. उसी प्रकार जो ये द्वारिका नगरी है वो भी एकदम सुरक्षित है क्योंकि बड़े बड़े बलवान यादव उनकी सुरक्षा कर रहे हैं. अनुवाद, जिस प्रकार नागलोक की राजधानी नागों के द्वारा रक्षित है, उसी तरह द्वारिका की रक्षा कृष्ण के समान बलवान वृष्णि के वंशजों भोज मधु दशारह अरह कुकुर अंधक आदि द्वारा की जाती है. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय हो. श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि नागलोक पृथ्वी लोक के नीचे उपस्थित है. मतलब ये पृथ्वी है, उसके नीचे है नागलोक. और ऐसा माना जाता है कि यहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाते, लेकिन उस लोक का अंधकार नागों यानी स्वर्गिक सर्पों के शिरों पर स्थित मणियों से प्रकाश के प्रकाश से दूर होता है। यह भी कहा जाता है कि वहां पर नागों के भोग विलास के लिए सुंदर बगीचे, सरोवर आदि हैं। यहां पर यह भी कहा गया है कि यह स्थान नागरिकों द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षित है। उसी प्रकार से द्वारिकापुरी भी ऋषि वंशियों द्वारा सुरक्षित थी, जो भगवान श्री कृष्ण के ही समान शक्तिशाली थे। यहाँ तक कि उनके इस धरती पर शक्ति प्रदर्शन का प्रश्न था। वास्तव में भक्तों, ये इतना सुंदर नगरी है द्वारिका, जहाँ पर भगवान रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका इतना वैभव है कि सूत गोस्वामी अधिक और उसके विषय में बता रहे हैं। वे कह रहे हैं श्लोक नंबर 12, सर्व ऋतु सर्व विभव पुण्य वृक्ष लताश्रमय उद्यानोपवनारामय वृत पद्माकर श्रियम्। सर्व ऋतु सर्व विभव पुण्य वृक्ष लताश्रमय उद्यानोपवनारामय वृत पद्माकर श्रियम्। सर्व ऋतु सर्व विभव पुण्य वृक्ष लताश्रमय उद्यानोपवनारामय वृत पद्माकर श्रियम्। सर्व ऋतु मतलब वहां पर बता रहे हैं कि वहाँ के सारे वृक्ष और लताएं, वृक्ष लता श्रमण यानी कि जितने भी वृक्ष और लताएं थे वे सभी ऋतुओं में सभी प्रकार के फल फूल देते थे। सर्व ऋतु सर्व विभव, विभव विभव का मतलब होता है ऐश्वर्य। अब जितने वृक्ष और लताओं का ऐश्वर्य क्या है, उनके फल उनके फूल, तो वो कह रहे कि ऐसा देखो संसार में नहीं होता है ना कि हर सीजन होता है उसके अनुसार फल मिलते हैं उसके अनुसार ही फूल मिलते हैं, मगर वहां पर द्वारिका में जो वृक्ष और लताएं हैं वो क्या कर रहे हैं, सर्व ऋतु सर्व विभव पुण्य वृक्ष लताश्रम है। फिर लताश्रम है मतलब इतने सारे लताओं के आश्रम बने हुए हैं, मतलब फूल इतने सुंदर हैं कि रास्ते से भी जा रहे होते हैं तो इतने सारे फूल खिले हुए होते हैं विभिन्न प्रकार के, जिनका सीजन भी नहीं चल रहा होता है, और इतने सारे फल होते हैं। और कौन कौन से यहाँ पर बताएं कि उद्यानों, उद्यान कहते हैं फल वाले जो वृक्ष होते हैं ना उनको बोलते हैं उद्यान, जो बाग होते हैं गार्डन्स। और उपवन किसको बोलते हैं, जो उद्यान में फल होते हैं बहुत सारे, और उपवन में क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। तो यहाँ पर उद्यानोपवन और उसके बाद आरामय, आरामय का मतलब होता है जहाँ पर आके मतलब सुंदर सुंदर पार्क होते हैं जहाँ पर आके सब रेस्ट करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं बच्चे। तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे गार्डन्स हैं, पार्क हैं, बहुत सारे फल हैं, फूल हैं, इतना सुंदर, मतलब द्वारिका नगरी जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और आगे कहते हैं वृत्त यानी घिरे हुए हैं सारे, किससे, पद्माकर यानी कमलों के जन्म स्थल का जल के सुंदर आगार, यानी बहुत सारे सरोवर हैं। पद्माकर मतलब ऐसे सरोवर हैं जहाँ से बहुत सारे कमल के पुष्प निकले। कितनी सुंदर नगरी है ये, जहाँ पर जगह जगह फल फूल वृक्ष हैं, पार्क हैं, गार्डन्स हैं, बगीचे हैं, और ऐसे ऐसे कमल जिसमें निकलते हैं, ऐसे सरोवर हैं, और बहुत ही जिसकी वजह से ये द्वारिका नगरी अत्यंत ही सुंदर है। वास्तव में भक्तों, ये सब जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं ना वो भगवान की सेवा करने के लिए वहाँ पर उपस्थित रहती हैं, क्योंकि जब भगवान अब इस धरती पर हैं तो धरती जो है वो हर अपने अंदर जो उसकी सुंदरता है, जो उसके अंदर क्षमता है, उसके अनुसार भगवान की सेवा करने के लिए द्वारिका को सजा रही है, संवार रही है, ताकि भगवान जो है वो उसका आनंद ले सके और भगवान धरती माँ की सेवा को स्वीकार कर सके। अनुवाद द्वारिकापुरी समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से पूर्ण थी। उसमें सर्वत्र आश्रम, उद्यान, पुष्पोद्यान, पार्क तथा कमलों से पूर्ण जलाशय थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि मानव सभ्यता की पूर्णता यथारूप प्रकृति के वरदानों का सदुपयोग करने से संभव बनाई जा सकती है, जैसा कि द्वारिका के ऐश्वर्य के वर्णन से प्रकट है। उसके चारों ओर पुष्पोद्यान तथा फलों के बागीचे थे और थे जलाशय जो कमलों से पूर्ण थे। यहाँ पर किसी मिल तथा कसाईगर के बल पर चलने वाली फैक्ट्री का उल्लेख नहीं है, जो आधुनिक महापुरियों के लिए आवश्यक साज सामान है। फिर भी आधुनिक संस्कृति मनुष्य के अंतःकरण में भी प्रकृति के वरदान का उपयोग करने की रुचि है। आधुनिक सभ्यता के अग्रणी अपने निजी आवासों को ऐसे स्थान में बनाते हैं जहां सुंदर बागीचे तथा जलाशय हों, लेकिन सामान्य व्यक्तियों को वे पार्क तथा बागीचों से रहित दम घोटू स्थानों में रहने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें द्वारिकापुरी का सर्वथा भिन्न वर्णन प्राप्त हो रहा है। ऐसा लगता है कि सारा धाम ऐसे उद्यानों तथा पार्कों एवं कमलों से पूर्ण जलाशयों द्वारा घिरा हुआ था। ऐसा लगता है कि सारे लोग प्रकृति द्वारा प्रदत्त फूलों तथा फलों पर निर्भर थे और वहाँ पर ऐसे उद्योग नहीं थे जिनसे धाम में गंदी बस्ती तथा झुग्गी झोंपड़ियां बढ़ती। सभ्यता की प्रगति का अनुमान उन मिलों तथा फैक्ट्रियों की बढ़ोत्तरी से नहीं लगाया जाता जिससे मनुष्य की कोमल भावनाएं विनष्ट हों, अपितु मनुष्य में आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के विकास से लगाया जाता है जिससे उन्हें भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त हो सके। फैक्ट्रियों तथा मिलों का विकास उग्र कर्म कहलाता है और ऐसे कर्म से मनुष्य तथा समाज की कोमल भावनाएं विकृत होकर असुरों का कारागार बना देती हैं। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आजकल फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी लगाई जाती हैं और मिलें लगाई जाती हैं जिसमें सिर्फ मनुष्यों को पशुओं की तरह कार्य करना, मतलब उनकी कोई पर्सनल लाइफ में कितना अच्छा, मतलब कुछ उनको सुकून नहीं है लाइफ का, सिर्फ बस एक मनुष्य को भी एक मशीन बना दिया गया है। और जो बड़े बड़े ये व्यापारी हैं वो अपने लिए तो अच्छे गार्डन्स वगैरह बनाते हैं जिसमें जाकर वो खुद रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन आम जो जनरल लोग होते हैं वो तो इतना बस खाली श्रमिक, उनका जीवन केवल और केवल श्रम बनकर रह गया है, सिर्फ कार्य कार्य कार्य। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इस ऐसे कर्म से मनुष्य तथा समाज की कोमल भावनाएं विकृत होकर असुरों का कारागार बना देती हैं। यहाँ पर पवित्र वृक्षों का उल्लेख है जिनमें ऋतु के अनुसार फल फूल लगते हैं। अपवित्र वृक्ष व्यर्थ के जंगल होते हैं, उनका उपयोग केवल ईंधन के लिए हो सकता है। आधुनिक सभ्यता में ऐसे अपवित्र वृक्षों को सड़क के दोनों किनारों पर रोपा जाता है। मानव शक्ति का दुरुपयोग कोमल भावनाओं के विकास के लिए होना चाहिए। क्षमा कीजिए, श्री रूपा जी कहते हैं कि मानव शक्ति का सदुपयोग कोमल भावनाओं के विकास के लिए होना चाहिए जिससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सके और इसी में जीवन का समाधान प्राप्त होता है। मनुष्य के शरीर में केवल तंतुओं के विकास के लिए फल फूल सुंदर उद्यान पार्क कमलों के बागीचे क्रीड़ा करते हंसों से युक्त जलाशय तथा प्रचुर दूध तथा मक्खन देने वाली गायें चाहिए। इसके विपरीत कारागार तुल्य खाने
फैक्ट्रियां तथा कार्यशालाएं श्रमिक वर्ग में आसुरी प्रवृत्तियों को जन्म देती हैं। श्रमिक वर्ग के बल पर ही शोषण को प्रशम प्रश्रय मिलता है, फलतः उनमें अनेक प्रकार के संघर्ष होते रहते हैं। द्वारिका धाम का वर्णन मानवीय सभ्यता के लिए आदर्श है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, मनुष्य जीवन में जीव को इतना सुंदर जीवन मिलना चाहिए जिसमें वो सादा जीवन और उच्च विचार को, अभी उसके जीवन में खाली ये फैक्ट्रियां होंगी, काम होगा, श्रमिक खाली शूद्रों की तरह नौकर बन के उनको कार्य कराया जाएगा, तो फिर अपने वो वास्तविक जीवन जीवन के वास्तविक लाभ की ओर नहीं जाएगा, आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकेगा। तो यहाँ जो द्वारिका वासी हैं, जहाँ के राजा द्वारिकाधीश हैं, तो उन्होंने समस्त नागरिक, क्योंकि भगवान जहाँ पर है वहाँ पर प्रकृति जो है वो स्वयं आके दिखा रही है कि कैसा जीवन होना चाहिए मनुष्य का, किस तरह से मनुष्य को समस्त लाभ प्राप्त होने चाहिए, आनंद प्राप्त होना चाहिए, फूल होने चाहिए, फल होने चाहिए, दूध होना चाहिए, प्रचुर मात्रा में सरोवर इतने अच्छे जलाशय होने चाहिए जहाँ पर साफ सुथरे माहौल में रहकर जीव आध्यात्मिक उन्नति कर सके। श्लोक नंबर 13, गोपुर द्वार मार्गेषु कृतको तुकतोरिणां चित्रध्वज पताकाग्रये अन्तः प्रतिहिताप अन्तर प्रतिहता तपां। गोपुर द्वार मार्गेषु कृतको तुकतोरिणां चित्रध्वज पताकाग्रये अन्तः प्रतिहतातपाम्। गोपुर द्वार मार्गेषु कृतकौतुकतोरणां चित्रध्वज पताकाग्रये अन्तः प्रतिहतापमाम्।
यहाँ बता रहे हैं सूत गोस्वामी कि गोपुर द्वार, यानी जो बहुत बड़ा द्वार है, एक देखो अभी क्या होता है, डायरेक्ट से हम लोग एंटर हो जाते हैं ना, पहले क्या होता है जब नगर में किसी भी, जैसे द्वारिका नगरी में एंटर होते थे तो बाहर एंट्री से पहले एक बहुत बड़ा द्वार होता था, उसको बोलते थे, जो मतलब बड़ा गेट होता था, इसको बोलते हैं गोपुर, यानी नगर का सिंह द्वार फाटक होता है। उसके बाद दूसरे घर होते हैं, लेकिन एंट्री जो गेट एंट्री होती है ना, उसको बोलते हैं गोपुर द्वार। मार्गेषु, मार्ग द्वार मतलब जो दरवाजा है उसका, मार्गेषु विभिन्न सड़कों पर, यानी कि उस द्वार पर और जो सड़कें हैं वहां पर उस पे कृत कौतुक तोरणम, वहां पर क्या ऐसा तोरणम ऐसे होते ना, सजावट की जाती है, बहुत सारे फ्लावर्स रखे जाते हैं, लगाए जाते हैं और बेलें लगाई जाती हैं, बहुत मतलब इतना सुंदर, जैसे द्वारिका का गेट एंटर करते ना बाहर से ही इतना सुंदर सुंदर सजा हुआ होता है, इतना खूबसूरत लगता है, द्वारिका नगरी दुल्हन की तरह सजे, कृतक कौतुक तोरणी, बहुत ही उत्सव ऐसा लग रहा होता है कि आज कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है यहाँ पर। हर रोज ऐसा लगता है जब 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 भी भगवान वहां पर होते हैं, तो जाहिर है जहाँ भगवान है, जैसे हम क्या करते हैं, जिस दिन भगवान का बर्थडे होता है, जन्माष्टमी हो, तो उस दिन डेकोरेशन करते हैं, लेकिन वहां पर तो सदैव भगवान होते हैं, तो कंटिन्यूस वहां पर इतना ही खूबसूरत सजाया जाता है। और चित्र मतलब चित्र अलग अलग है ना, उधर चित्र लगाए जाते हैं, ध्वज पताका, ध्वज और झंडी, बड़ी बड़ी झंडियां लगाई जाती हैं और पताकाएं लगाई जाती हैं जिसमें है ना भगवान उग्र भगवान के ना चिन्ह लगे होते हैं ना, पताका लगी होती है कि भाई ये द्वारिका की पताका है, जैसे इंडिया का झंडा होता है और इस तरह पाकिस्तान का होता है या किसी भी कंट्री का होता है ना, इस तरह द्वारिका की पताकाएं, और इतनी बड़ी बड़ी होती है, इतनी सुंदर बड़े बड़े पताकाएं लगी हुई होती है, उससे क्या होता है अंतः प्रतिहता तपाम, अंतः मतलब भीतर, प्रतिहता मतलब आने नहीं देती, किसको आतपाम, इतनी बड़े बड़े झंडे लगे होते हैं, खूबसूरत डेकोरेशन की होती है और है ना फ्लावर्स लगे होते हैं और तोरण लगे होते हैं, तो इससे क्या होता है
आतपम यानी धूप जो है वो उन झंडों को क्रॉस करके अंदर आ ही नहीं सकती। मतलब इतना सुंदर लग रहा होता है कि वहां पर धूप भी नहीं आती, इतना हर वक्त बहुत ही सुंदर सुंदर मौसम वहां पर होता है। ऐसा लगता है आज धूप ही नहीं निकली, और वो झंडे जो है ना बड़े बड़े लगे होते हैं, इसकी वजह से अंदर धूप भी नहीं आती। अनुवाद, भगवान के स्वागतार्थ नगर का फाटक, घरों के दरवाजे तथा सड़कों के किनारे झंडियों से सजे बंधनवार बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्षों तथा आम की पत्तियों जैसे मांगलिक प्रतीकों से सजाए गए थे। झंडियों, फूल मालाओं तथा चित्र विचित्र संकेतों तथा लिखित नारों से धूप अवरोध हो रही थी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, विशेष उत्सवों की सजावट के लिए प्रतीक भी प्रकृति के उपहारों से केले के वृक्षों, आम की टेरियों, फूलों तथा फलों से लिए गए थे। आज भी आम्र वृक्ष, नारियल तथा कदली वृक्षों को मांगलिक प्रतीक माना जाता है। ऊपर जिन झंडियों का उल्लेख है उनमें गरुड़ अथवा हनुमान भगवान के इन दो महान सेवकों के चित्र अंकित थे। अब भी ऐसे चित्र तथा अलंकरण भक्तों द्वारा पूजित हैं, और भगवान की तुष्टि के लिए सेवक को अधिक सम्मान प्रदान किया जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देखो, जो वास्तव में मांगलिक वस्तुएं होती है ना, मतलब मंगलदायक जो वस्तुएं होती हैं वो भी प्राकृतिक होती हैं, हम कोई क्रिएट करते हैं वो नहीं। जैसे आम के पत्ते, केले के वृक्षों के पत्ते, फल फूल, इसी से अगर हम ना डेकोरेशन करते हैं तो उसी से बहुत ज्यादा, जैसे नारियल, आम्र वृक्ष, कदली वृक्ष के, ये सब मंगल प्रतीक हैं। तो इससे जब हम डेकोरेशन करते हैं, सजावट करते हैं, तो इससे मंगल होता है। मंगल माना शुभ होता है। कोई भी कार्य जब हम कर रहे होते हैं, जैसे हमारे घर में यज्ञ होता है या कोई भी पूजा होती है, तो इन्हीं वस्तुओं के साथ हमें सजावट करनी चाहिए। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर बात बताई है कि भगवान को प्रसन्न करना होता है तो भगवान के सेवक को अधिक सम्मान प्रदान करना चाहिए। यानी कि अगर हम यहाँ जो गरुड़ और हनुमान जी के विषय में बता रहे हैं कि भगवान की जो पताकाएं हैं उन पे गरुड़ जी और हनुमान के चिन्ह लगे हुए थे, क्योंकि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब उनके सेवकों को सम्मान प्राप्त होता है। तो हमें वैष्णवों को, भक्तों को बहुत सम्मान प्रदान करना चाहिए। कभी भी किसी भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी भक्त को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारे किसी बात से, हमारे किसी व्यवहार से भक्त को दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भक्तों को सम्मान मिलता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और यदि किसी भक्त का हमारे द्वारा अपमान हो जाएगा तो भगवान का भले कितना ही हम अच्छी तरह से पूजन करें, भक्ति करें, लेकिन भगवान जो है वो संतुष्ट नहीं होंगे। क्योंकि भगवान जो है, जब उनके भक्तों का सम्मान होता है तभी भगवान संतुष्ट होते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।